नमस्कार दर्शकों, आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम मार्गदर्शन में मैं मोना देसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हमारे बीच नागपुर शहर की वो महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं जो एक अपने आप में गृहिणी हैं, जो परिवार और समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं और साथ ही में अपने परिवार को और समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का उनका प्रयास है। तो मैं उन सभी महिलाओं का भी मैं स्वागत करती हूं। परिवार के साथ, समाज के साथ सामंजस्य करते हुए कई परेशानियां, कई उलझने, कई मन के तनाव भी कहीं न कहीं जन्म लेते हैं छोटे मोटे स्वरूपों में, और उन समस्याओं से समाधान देने के लिए आज हमारे बीच मार्गदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी। मैं दीदी जी का स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। दीदी जी विदर्भ सब जोन नागपुर की संचालिका हैं और पिछले 56 वर्षों से दीदी ने अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। दीदी मृदुभाषी, सरल और बहुत ही सहज हैं। तो आज हम दीदी से अपनी कुछ समस्याओं का, अपने कुछ प्रश्नों का समाधान और मार्गदर्शन चाहेंगे। तो दीदी हम शुरू करें आज के प्रश्न उत्तर की यह श्रृंखला। हमारे साथ हैं श्रीमती प्रीति चांडक, तो मैं उनके प्रश्न का स्वागत करती हूं।
मैं बचपन से सुनते आ रही हूं कि जो 84 योनियां हैं वो कहां तक सच है। बच्चे इस बारे में क्वेश्चन करते तो मुझे जवाब देना नहीं आता।
84 लाख योनियां जरूर हैं, परंतु वो एक पूरे क्वालिटीज हैं, उसमें जीव जंतु पशु पक्षी सब है, परंतु मनुष्य मर करके मनुष्य ही बनता है, वो उन 84 लाख योनियों में नहीं जाता। जैसे गेहूं से कभी चना नहीं निकलेगा, चने से मक्का नहीं निकलेगा, कोई भी जैसा बीज वैसा फल, ऐसे जो आत्मा मनुष्य की है वो शरीर छोड़ने बाद भी मनुष्य बनती है, पशु पक्षी जानवर कीड़ा मकोड़ा ये नहीं बनते। उसके लिए हम कहें कि आज जो मनुष्य है कर्म से श्रेय बुरे कर रहा है, जो उसके कारण उनको कहते भी हैं, अगर कोई ज्यादा बोलता है गालियां देता है तो यही कह देते कुत्ते की तरह भौं भौं क्यों कर रहे हैं। ऐसे हर जानवर की उपाधि हम कहां ना कहां दे डालते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में होकर के भी उसके कर्मों के कारण उसके पर वो नाम पड़ता है, ना कि कोई योनि में जाता। ज्ञान की डिटेल जब लेंगे, समझ सकेंगे, जब खुद सेटिस्फाइड होंगे तब उनको जरूर आप कर सकेंगे।
हमारे साथ हैं आज मीनाक्षी सारडा जी, जो अपना कोई प्रश्न आपसे पूछना चाहती हैं। मैं मीनाक्षी सारडा जी का स्वागत करती हूं।
हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे बाहरी चीजों की और ज्यादा ध्यान है, उनमें से हमने अच्छे संस्कार कैसे देना चाहिए?
क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये हर माता का कर्तव्य है। इसके लिए पहले तो माता को स्वयं के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि मेरे हाथ से ऐसा कर्म ना हो जावे। माता हो पिता हो दोनों जवाबदार हैं। जैसे मान लीजिए एक बार की बात, एक व्यक्ति उनके घर पर आया, दरवाजा खटखटाया, तो उसके पिताजी ने कहा कि जाकर के कह दो पिताजी घर में नहीं है। उसने जाकर के वही रिपीट किया, पिताजी कहते हैं कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। तो अब सोचिए उस समय तो उसने वो कार्य किया, बाद में क्या उसके अंदर झूठ बोलने के संस्कार नहीं भर गए? पिता अगर सिगरेट पिएगा तो बच्चा देख करके छिप करके जरूर पिएगा, उसको आदत लग जाएगी। अगर पिताजी शराब पी रहे हैं तो वो सोचता है कि इसमें क्या आनंद आता है, मैं भी देखूं। वो पिता है और व्यसन लग जाते हैं। अगर माता कुछ फैशन करती है तो वो समझते कि नारी का काम या फैशन, उसकी बच्ची भी वही सीख जाती है। हमारे सामने किसी ने कहा, मां ने एक शिक्षा दी, उसने ये कहा अपने छोटेपन में आपने क्या किया, हम भी आज छोटे हैं वही कर रहे हैं जो आपने किए। तो इस प्रकार से बच्चे अनुकरण मां बाप का करते हैं। तो इसलिए माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा आपसी व्यवहार करें, ये ना हो माता पिता के बीच में बात बात होती रहे, दो दो बातें होंगी, कभी बात नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, भाई भाई इस बहन से लड़ेंगे, आपस में बात करना बंद कर देंगे। तो घर का वातावरण माता पिता ने ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चे अच्छी बात का ही अनुकरण कर सके, क्योंकि उनके अनुकरण करने की बहुत बड़ी शक्ति बच्चों में आ जाए।
हम जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे हमारा अनुकरण करके सीखेंगे। यदि हमें बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं तो पहले हमें अपना जो मार्ग है वो इस तरह का बनाना होगा कि बच्चे उनका अनुकरण करके और अच्छे संस्कार सीख सके। मुझे लगता है कि प्रीति इनको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है, और हम चलते हैं दीदी अगले प्रश्न की तरफ। हमारे साथ हैं कविता जेजानी जी, और उनके प्रश्न का मैं स्वागत करती हूँ।
मेरा प्रश्न है कि रिश्तों को मधुर बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें?
इसके लिए पहले एक दो के दिलों में समीपता, वो कब आएगी, जब पहले हम बड़ों की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि कन्या जब दूसरे परिवार में जाती है जब तक एक दो को समझे पहले आज्ञाकारी बनो। दूसरा, एक दो की बात को सम्मान दो। तीसरी बात, ये मन में कभी नहीं रहे कि जो मैंने कहा वो सबने मानने चाहिए, चाहे मैं घर की बड़ी हूं या समझते हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो वो समझते कि हमने जो कहा वो माने। तो इसलिए एडजस्टमेंट पावर एक दो में आना बहुत जरूरी है। और चौथी बात मैं कहूंगी कि नम्रता का गुण हर महिला के अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं अपने पद का ईगो हो, मैं भी कोई कम समझदार हूं कि मैं सबकी क्यों मानूं, कुछ उन्होंने भी मानना चाहिए, कुछ अगर मैं झुकती तो इन्होंने भी झुकना चाहिए। तो ऐसे मन के अंदर पक्की धारणा बनाएं कि एडजस्टमेंट करनी है, मधुरता अगर हमें व्यवहार के अंदर लानी है, परिवार में लानी है, तो एक दो को रिस्पेक्ट दें, नम्रता के गुण को धारण करें। इस पर मैं एक मिसाल केवल देती हूं कि ये पांच अंगुली आप सबको मालूम है छोटी बड़ी है, पर छोटी बड़ी होने बाद हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो इसने कहा मैं सबसे बड़ी हूं, ये बोली मैं सबको मार्ग बताती हूं, इसने कहा मैं भगवान को तिलक भी लगाती हूं सबको का स्वागत भी करती हूं, ये बोली भगवान ने स्वदर्शन चक्र तो इसी उंगली पे उठाया था, ये बोलती है मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मोटी हूं तो क्या हुआ, पर जो दफ्तर में मेरे बिना तो काम ही नहीं चलता, कंप्यूटर युग में भी काम नहीं चलता। भगवान ने देखा कि इनको अपना अपना विशेषता राइट है, स्वदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत, यहां तो इसने कहा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी इसी पर उठाया था, ये बोली ऑफिस के अंदर मेरे बिना काम नहीं चलता, आज कंप्यूटर युग में भी कंप्यूटर के ऊपर भी मेरे को लगाना पड़ता है तब आपका कोई कार्य व्यवहार चलता है। तो भगवान ने कहा देखा कि पांचों की बात राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है, परंतु संगठन का क्या महत्व है पता ही नहीं है। तो एक बार किसी से बूंदी बनवा दी काफी सारी और इनको बोला देखो बूंदी तैयार है, आप उंगली एक एक उंगली केवल एक एक लड्डू बांध कर दिखाओ। अब आप बताइए वो बांध सकी नहीं, जब पांचों मिली अच्छा का पांचों मिलकर के बनाओ तो वो पांच तो क्या, क्योंकि पांच किस में पांच आएगी, पांच के 5000 लड्डू बन गए। तो ये क्या हुआ संगठन, संगठन में भी पॉजिटिव हो, नम्रता वाला हो, एक ये भी संगठन है। यहां भी उंगलियां मिलती है पर एक उंगली अलग रहती है, तो ये सबको डिस्ट्रक्टिव काम करते, थप्पड़ लगाते, दुख देती है, पर ये कंस्ट्रक्टिव है। परंतु ये कंस्ट्रक्टिव संगठन कब बना, जब आप देखते हो ये पूरी की पूरी झुक गई। झुकने से, ये झुकना एक नम्रता का गुण है, झुकने से ही वो हम कार्य कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी नारी काम करते बिना झुके कर सकती क्या, ना रोटी बना सकती ना सफाई कर सकती ना कुछ भी कर सकती है, झुकना ही पड़ता है। ऑफिस में भी काम करो तो झुकना ही पड़ता है। तो पर जब हम हर कार्य में झुक सकते हैं तो हम अपने परिवार के अंदर क्या एक दो के आगे नहीं झुक सकते, अपनी गलती नहीं मान सकते, सॉरी नहीं कह सकते, सॉरी कहने में भी क्यों देव मान आता है, वहां क्यों अकड़ जाते हैं। तो जब हर एक कहेगा मैं राइट, वो कहेगा मैं राइट, जैसे अगले हर एक राइट का बात कर रही थी, परंतु अहंकार। तो अगर हम अपने जीवन से अहंकार निकाल दें, नम्रता को ला दें, एक दो के आगे झुक जाए, एक दो की बात को मान लें, कहते एक ने कही दूसरे ने मानी, सबसे बड़ा वो ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। ये परिवार में बात को लागू करो, झुकिए सॉरी कहिए और आगे के लिए ध्यान रख करके वो कार्य करिए। इसके लिए कहावत है झुकते वो ही हैं, झुकते वो ही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ कर रहना मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हम अकड़ करके उस प्रकार से न चले। तो अगर जिस परिवार के अंदर ये नम्रता का गुण होगा तो वहां परिवार बहुत प्यार भरा परिवार हो जाएगा। एक मेरा कहना या रिक्वेस्ट, ये नम्रता के गुण को धारण करने के लिए दूसरे की ओर उंगली मत दिखाना, उसने भी झुकना चाहिए ये मेरे लिए, क्यों एक उंगली उधर है तो चार मेरे तरफ, पहले मैं करूं, मैं करके और अपने आप मेरे से सीख जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पहल आप करिए तो फिर देखिए आपके परिवार के अंदर कितना आनंद ही आनंद हो जाएगा।
बहुत सुंदर बात दीदी आपने कही है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। बहुत सुंदर, ये स्त्री शक्ति के आभूषण है, नारी के आभूषण है, तपस्या है, समर्पण है, त्याग की भावना है, ये सभी स्त्री के अलंकार हैं, आभूषण हैं, और इन्हीं आभूषणों को यदि हम जी लें इन्हीं के साथ तो मुझे लगता है कि परिवार और समाज में हम बहुत अच्छा सामंजस्य कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारी जितनी भी बहनें यहां पर आई हैं, ये उनके प्रश्न तो थे ही, साथ ही में हमारी और भी दर्शक बहनें जो आज ये कार्यक्रम देख रही हैं उनके भी प्रश्नों का यह समाधान आपसे आज हमें मिला है। दीदी आज की जो गृहिणी है, जो एक महिला है, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हमारे साथ जो आज गृहिणियां यहां पर उपस्थित हैं उनके मन में और भी कई तरह के प्रश्न हैं जिनका समाधान, जिनका मार्गदर्शन वो आपसे चाह रही हैं। तो मैं एक बार आमंत्रित करती हूं संगीता जी अग्रवाल को और उनके प्रश्न का मैं स्वागत करती हूं।
दीदी जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए दोनों का एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए?
इसके लिए हमारे को आपस में मिलने की बातचीत करने का महत्व होना चाहिए पहले तो, क्योंकि क्या होता है ऑफिस में जाते हैं तो समय पर जाएं और समय पर घर पे लौट आए। बहुत बार ये देखा गया है ऑफिस काम टाइम पूरा होने के बाद भी कोई मित्रों में चले जाते, दोस्तों में चले जाते, दूसरी जगह पर चले जाते। ये हम दोनों अपना पहले ये नियम बना लें कि ड्यूटी पूरी हुई सीधे घर आए। तो जब सीधे घर आएंगे तो जो बाहर हमारा समय जाता है तो वो हमारा सेव हो जाएगा। तो स्वाभाविक ही है हमारे को आपस में बैठने का, बातचीत करने का समय मिल जाता है। पर हम इसके महत्व को नहीं जानते तो अपना कहीं भी हम लोग टाइम पास करते हैं। फिर घर आने के बाद भी कई बार हम केवल टीवी के सामने ही बैठ जाते हैं, उसमें अपने मन को लगाते हैं। उसमें टीवी भी समय पर देखिए, पर तो उसमें से भी समय निकाल करके आप आपस में भी एक दो के प्रति समय दीजिए। हमारा समय कहां व्यर्थ जा रहा है? केवल ड्यूटी की बात नहीं होती है, उसके अलावा भी हमारा बहुत समय व्यर्थ जाता है, उसको आप सेव करिए।
और उस समय को यदि हम सेव करेंगे तो फिर वो एडजस्टमेंट में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और इसी बात के ऊपर चलने से वो जो बोलते हैं कि रथ के जो दो पहिए हैं तो वो उसी तरह जीवन
बराबर चल
सकेंगे। दीदी, प्रश्नों की झड़ी तो यहाँ पर हमारे लिए तैयार ही है। और अगला प्रश्न करने के लिए हमारे साथ हैं सुनीता जेजानी जी, तो मैं उनके प्रश्न का स्वागत करती हूँ।
नमस्ते दीदी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ससुराल में आने के बाद कभी कुछ मन में विचार आया तो हम किसके साथ शेयर करें?
आप अपने मन की बात सबसे पहले अपने घर के बड़ों को बताइए, चाहे अपने पति को, अपनी सास को, क्योंकि जब आप बताएंगे तब एक दो के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और प्यार भी बढ़ता जाएगा। जहां विश्वास है वहां प्यार है। दूसरी बात, जब भी अपने दिल की बात कहनी हो पहले योग्य समय देखिए। योग्य समय का मतलब है कि उनके उस समय बड़े किस कार्य में व्यस्त है या फ्री है, इस समय उनका मूड कैसा है, सुन सकेंगे या नहीं, वो रूप टाइम देख करके, योग्य समय देख करके अपने दिल की बात कहिए। तीसरी चीज, कहने का ढंग बहुत मधुर। कभी कभी हम जोश में आकर के तब अपने मन की बात कहते हैं, या वो जोश में है तब कह देते हैं, या हम जोश में हैं तब कह देते हैं, तो कहने का ढंग रूप सब बदल जाता है। तो अच्छी बात भी एक को नेगेटिव काम करने लगती है। फिर हम कहते हैं मैं सच बोल रही हूं मगर मेरी कोई मानता नहीं है, पर मैंने वो योग्य समय चूज नहीं किया और दूसरा मेरा कहने का ढंग ठीक नहीं रहा। जिस समय वो रिलैक्स माइंड में हो उस समय कहिए। दूसरी बात, समझो मान लीजिए आपका पति ड्यूटी से आया है, स्वाभाविक है जो दिन भर काम करके आएगा थक जाता है, और हमारे दिन भर के अंदर जो कारोबार चली हुई है हम उस बातों के चिंतन में अपना मुंह बना के बैठे, तो क्या आने के बाद आपके पति की दिल होंगी आपसे बात करने की? वो जब आए फ्रेश मूड में उनका स्वागत करिए। रिसीव करिए, उनको चाय दीजिए। ये नहीं वो चाय पी रहे उस समय अपनी राम कहानी सुना रहे हैं। आज जो कहा जाता है घर घर में महाभारत हो गई है, कारण यह है बोलता सच्ची बात है पर योग्य समय योग्य तरीका ये हम कुछ नहीं देखते, जिस कारण से उसका रूप बिगड़ता जाता है। इसके लिए हमको धीरज के गुण की आवश्यकता है। पति देव आए हैं, चाय दीजिए, फ्रेश होने दीजिए, फिर बाद में आप कोई दिल की बात कहिए तो वो भी इंसान है, जरूर सुनेंगे। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी एक नेचर है 10 को वो बात सुनाने की, सखी सहेली महिलाएं मिलेंगी, आप जानते हो जो महिलाओं के लिए एक गायन है कि अगर एक नारी अकेली बैठी है एक घंटे में अगर 5 किलो गेहूं पीस सकती है, पहले हाथ से पीसते थे, अगर 2 महिलाएं मिलेंगी तो कितना किलो पीसेंगी, 2 के वाटे में एक्चुअली 10 किलो आ जाता है परंतु वो 2 ही किलो पीसेंगी। कारण है वो बातें करती हैं, बातें वो कोई काम की नहीं होती हैं, उसके घर के महाभारत उसके घर के रामायण सुनाते, फिर वो उल्टा जोश भर के जाते हैं। तो ना तो हमारा काम होता है, समय हमारा व्यर्थ जाता है और एक दो से विश्वास हट जाता है। जहां विश्वास हटा वहां परिवार टूटा। इसलिए ये जो हमारे अंदर एक नेचुरल क्वालिटी महिलाओं में कही जाती है उसको अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए, योग्य समय पर कही। दूसरे शब्दों में कहूंगी कि आप घर का कचरा उठा के तो बाहर फेंकते हो, क्या दूसरे के घर का कचरा अपने अंदर लाते हो क्या? अच्छा, अपने घर का कचरा भी जब बाहर फेंकते हो तो आप डस्टबिन में डालते हो कचरा, किसी के घर में नहीं डालते, रोड पर नहीं डालते। तो ऐसे अपने दिल की बात एक तो योग्य समय पर योग्य स्थान पर कहें, और या फिर किसी की व्यर्थ की बातें न सुने जो हमारे अंदर वो कचरा भरता जाए, वो भरते भरते हमारे मुंह से निकल जाए। इन बातों की सावधानी हर एक महिला को रखनी चाहिए।
कहते हैं मधुर वाणी से तो जग जीता जा सकता है, प्यार के 2 मीठे बोलों से जग जीता जा सकता है। तो हम प्यार के 2 मीठे बोलों से अपने पति का अपने सास का तो दिल जीत ही सकते हैं। और दीदी घड़ी की सुइयां तो हमें कह रही हैं कि समय को हम देखें, लेकिन हमारे साथ एक आखिरी प्रश्न करने के लिए है कविता सिंघानिया जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है आज का।
नमस्ते दीदी, मेरा यह प्रश्न है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कार्य बहुत दिल से करते हैं और परिवार के सदस्य उसमें भी जब माइनस पॉइंट निकालते हैं तो उस समय हम बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं, तो उस वक्त हम अपना उत्साह कैसे कायम रखें?
उस समय आप अपने पर विश्वास रखें। अगर कार्य मैंने राइट किया है, बड़ों ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, पर वास्तव में होता क्या है, अगर हमारी मां हमको टोकती थी तो ये हम कहते थे कि मां तो सिखाने के लिए बोलती है। वही स्लोगन अगर हमें अपने घर में पक्का हो, सास को सास मत समझे, वहां पर समझे हमारी मां है। तो अगर मां होकर के कोई बात कहती है तो उसको आप स्वीकार करो, स्वीकार करेंगे तो आपका उत्साह कम नहीं होगा। हो सकता है जो कार्य मैंने आज किया मेरी नजरों में मैंने सही किया है, कहा ना कहा कुछ कमी रह गई होगी, तो वो अगर कमी रही है तो तुरंत निकाल दीजिए, आगे के लिए अटेंशन रखिए। अगर नहीं है तो हो सकता है भविष्य में मेरी जो गलती होने वाली है उससे सावधान पहले मैं हो जाऊं। तो निशिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हम उत्साह को कम ना करें, उनको मार दिल से समझें। एक होता है मुख से कहना, एक होता है दिल से कहना। दिल में जब हम मां का प्यार होगा तो कभी आप उत्साही नहीं होंगे, उनकी बात आपको लगेगी नहीं। ये मुझे सिखाने के लिए कह रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो इसमें मेरा कल्याण है, इससे भी मैं कुछ सीखूं। तो जब ये सीखने की भावना होगी, माता का स्नेह होगा, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं डाल सकता।
दीदी मुझे लगता है कि जो ये आपने बात कही है उससे तो जितनी भी महिलाएं हैं आज दर्शक मित्र जो देख रहे हैं उनको उनके भी प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। और समय विदा लेने को आतुर है, एक बार फिर हम मिलेंगे इसी प्रश्न मंच के साथ इसी मार्गदर्शन कार्यक्रम में। और सभी दर्शक मित्रों का, सभी आए हुए गृहिणियों का, आज जो हमारे साथ हाउसवाइफ्स यहाँ पर आई हैं उन सभी का, और दीदी मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद आपको देती हूँ कि आपने आज अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारी इन बहनों का, इन महिलाओं का आपने बहुत सुंदर तरीके से मार्गदर्शन किया। तो मैं सभी दर्शक मित्रों से मैं विदा लेती हूँ यही कहते हुए कि एक बार हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। धन्यवाद।